તારીખ 26/2/1986 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 124.
સમુદાયો દ્રવ્યમ તત્વા સૂત્ર કા જો સૂત્ર હૈ ગુણ કા સમુદાય વો દ્રવ્ય એક વસ્તુ મે એક પદાર્થ મે અનંત ગુણ એક વસ્તુ રૂપ સે રહેતા હૈ उसको द्रव्य कहते हैं। ऐसा जीनवचन है मैंने अनादि वस्तु स्वरूप का ये जीनवचन में प्रसिद्ध वस्तु व्यवस्था है। पर्याय अवस्था न हो तो वस्तु को परिणमावे कौन? पर्याय रूप वस्तु की कोई हालत न हो तो वस्तु जो समय समय पर अन्य अन्य स्थिति रूप दिखती है तो वो कैसा बन सकता है? प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जितने इंद्रिय ज्ञान गोचर पदार्थ हैं, अपना भी जो स्थूल मनाश्रित परिणाम है ये पलटते हुए दिखते हैं, बदलते हुए दिखते हैं, एक रूपता इसमें दिखती नहीं। अगर पर्याय अवस्था न होती तो वस्तु को वस्तु में ऐसा परिणमन होना, बदलना होना, अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना वो कैसे बन सकता? नहीं बन सकता। उत्पाद व्यय ध्रुव उत्पादन ना निकाल दिया मिसप्रिंट। उत्पाद व्यय ध्रुव भी न सधे एक पदार्थ में अवस्था का उत्पाद व्यय ध्रुव है। वहाँ पदार्थ का स्वरूप जो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है वो भी परिणाम न होने से नहीं सकता, परिणाम होने से हो सकता है। षडगुणी वृद्धि हानि न होती, अनेक प्रकार की गुण के परिणाम की जो तारतम्यता है स्थूल रूप से देखें तो तारतम्यता है वो न देखें। जैसे परमाणु का वर्ण गुण है तो उसमें जो भी वर्ण प्रसिद्ध है उसमें कटपणा अच्छापणा ऐसा दिखने में आता है। तो एक काला है और एक सफेद है ऐसा नहीं दिखता है, तो वर्ण गुण की पर्याय। जैसे पत्ता है वो हरा दिखता है, वनस्पति का पत्ता हरा दिखता है, उन्हें वो पत्ता पीला भी दिखता है, पीला हो जाता है। ये जो बदलना होता है हानि वृद्धि होती है, उसमें सीधा ही पीला नहीं होता, पहले फीका होता है फिर पीला होता है। ये जो अवस्था में एक ही वर्ण गुण की एक ही गुण की अवस्था में हानि वृद्धि दिखने में आती है, अधिक ज्यादा को दिखने में आता है, ये भी परिणमन न हो तो न हो सकता, नहीं हो सकता। और षडगुण हानि वृद्धि न होने से अर्थ पर्याय का अभाव होने अर्थ पर्याय का अभाव हो जाता है। अगर किसी किसी पदार्थ में अर्थ पर्याय का अभाव हो गए तो वस्तु का अभाव हो गया। अभाव मैंने अर्थ पर्याय मैंने भाव पर्याय, व्यंजन पर्याय मैंने आकृति रूप पर्याय, और अर्थ पर्याय मैंने अनेक प्रकार के गुणों के भावों के पर्याय। पदार्थ में अर्थ पर्याय अगुरु लघु गुण के हिसाब से, अगुरु लघु गुण के कारण से है, और षडगुण हानि वृद्धि भी वो अलघु गुरु के कारण से है, और वो अर्थ पर्याय नहीं हो गए तो वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं कर सके। जैसे आत्मा में जानना वो अर्थ पर्याय है, जानना देखना सुख होना दुख होना ये अर्थ पर्याय है, भाव पर्याय है, और इनकी जो शरीर रूप जो आकृति है वो व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय नहीं हो तो वस्तु का अभाव है, वस्तु अपने प्रयोजन भूत कार्य नहीं कर सकती, आत्मा जानने का कार्य नहीं कर सकती, वस्तु का अभाव हो जाता है। इसलिए पर्याय अवस्था से सर्व सिद्धि है। इसलिए पर्याय अवस्था से सर्व सिद्धि मैंने द्रव गुण पर्याय विचार गई हो, वो पर्याय अवस्था ही सब सिद्ध कर किया जाता है। पर्याय व्यक्त पर्याय नहीं हुए तो वस्तु का अस्तित्व को सिद्ध करना ही मुश्किल हो जाता है। वस्तु की अवस्था न दिखे, अवस्था रहित वस्तु हुए तो वस्तु का जो अस्तित्व है अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। सब सिद्धि जो है वस्तु के स्वरूप की पूर्ण सिद्धि है वो अवस्था से की जाती है। अवस्था इसकी माध्यम है सिद्ध करने के लिए, इसलिए अवस्था का अभाव तो मान ही नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। अब वस्तु के स्वरूप, वस्तु का स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं कि द्रव गुण पर्याय में व्याप्ता है, व्यापक है। द्रव किसको कहे कि जो अपने द्रव गुण पर्याय, अपने गुण पर्याय में जो व्यापक रूप है उसको द्रव कहे। द्रव में नहीं है, द्रव समान सामान्य त्रिकाली नहीं, त्रिकाली स्वभाव की बात नहीं। प्रमाण का विषय और छह द्रव्य, एक जीव द्रव्य का भी बात नहीं, छह द्रव्य, जीव हो पुद्गल हो धर्मास्ति या धर्मास्ति आकाश कालान सब आ जाता है। सभी द्रव्य अपने गुण पर्याय में व्यापक रूप से बराबर व्यापता है। गुण भी द्रव्य का एक अंग है, पर्याय भी द्रव्य का एक अंग है। जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष का व्यापना कहाँ हुआ कि मूल में भी वृक्ष व्यापक है, थड में भी व्यापक है, इसकी शाखा प्रशाखा में भी व्यापक है, पत्ते में भी व्यापक है, फूल में भी व्यापक है, फल में भी व्यापक है। कहाँ वृक्षत्व नहीं है, इसके सर्व अवयव में वृक्षत्व है। ऐसे गुण पर्याय में द्रव्य व्यापक है और जो गुण है वो द्रव्य पर्याय में व्यापता है। गुण जो है वो पूरा द्रव्य में व्यापक हो गया है। कहाँ गुण नहीं है, ज्ञान गुण कहाँ नहीं है, एक प्रदेश ऐसा नहीं है आत्मा का जिसमें ज्ञान गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। सभी गुण पूरा द्रव्य में व्यापक है और सभी गुण जो है वो अवस्था में भी परिणमन रूप व्यापता है। गुण परिणत होता है तो ये पर्याय में व्यापक हुआ, पूरा क्षेत्र में व्यापक हुआ, तो द्रव्य का पूरा क्षेत्र में मैंने द्रव्य में व्यापक हुआ। और पर्याय गुण द्रव्य में व्यापक नहीं, पर्याय कहाँ नहीं होती, द्रव्य के पूरे क्षेत्र में होती, और गुण की तो पर्याय है, गुण की पर्याय है तो गुण में नहीं है ऐसा तो बात नहीं है, गुण की पर्याय गुण रहित हो ऐसा नहीं है, अगर गुण पूरे द्रव्य में व्यापक है तो पर्याय का कहना आवश्यक भी नहीं है कि वो पूरे द्रव्य में व्यापक है, तो स्वयं सिद्ध हो जाता है कि पर्याय द्रव्य गुण के बराबर पूरी पूरी व्याप्ति हो व्याप्ति है। अभी तो इधर तो वास चलती है, नान का अग्नेय रूप वस्तु कैसी है, ये एक सर्व सामान्य बात चलती है, आत्मा आत्मा के लिए बात नहीं चलती, सर्व सामान्य बात चलती है कि आत्मा हरेक पदार्थ प्रत्येक पदार्थ की वस्तु व्यवस्था क्या है, फिर इस पर से बोध लेना वो अध्यात्म का विषय है, और ये द्रव्यानुयोग का आगम का विषय है, आगम का विषय, यहाँ तो आगम का विषय चलता है, प्रकरण जो चलता है वो द्रव्यानुयोग अनुसार वस्तु व्यवस्था आगम में कैसी बताई है ये चलता है। यहाँ एक बात समझ लेना चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक है, फिर भी द्रव्य का द्रव्यत्व है वो गुणत्व नहीं है और वो पर्यायत्व नहीं है, सिद्ध किया ना कि द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक, गुण द्रव्य पर्याय में व्यापक, पर्याय गुण द्रव्य में व्यापक, फिर भी यही बात वैसी की वैसी है कि द्रव्यत्व है वो गुणत्व और पर्यायत्व नहीं है, जो वस्तु का गुणत्व है वो द्रव्यत्व नहीं है और पर्यायत्व नहीं है, और जो वस्तु का पर्यायत्व है वो गुणत्व नहीं है और द्रव्यत्व नहीं है, व्यापक रूप से परस्पर होने के बावजूद भी जो अपना अपनापना है वो तो अपना अपनापना है। पदार्थ सत्व मैंने स्व अवस्था थी अस्थि है, मैंने अपने स्वचतुष्टय से अस्थि है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और परचतुष्टय अवस्था से नास्ति है, ऐसे द्रव्य का अस्तित्व की ये मर्यादा है, ये सीमा है, इस मर्यादा का उल्लंघन करके अपरिणमन अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय में निवास करता हुआ विश्व के सभी पदार्थ अपने अपने में कार्यगत होता है, किसी अन्य पदार्थ में कार्यगत नहीं हो सकता, ये वस्तु की जो मर्यादा है उस पर से बोध एक मिलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, वस्तु हूँ, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हूँ, और मैं मेरे में कार्य कर सकता हूँ, किसी अन्य पदार्थ में मेरा कार्य होना अशक्य और असंभवित है, ये यहाँ से निकलता है। अध्यात्म में जो भेद ज्ञान का विषय है उसके साथ वस्तु की स्वरूप मर्यादा का जो आगम है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, प्रत्येक पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न भिन्न है, तो किसी पदार्थ का कार्य दूसरे अन्य पदार्थ में हो ही नहीं सकता, प्रत्येक पदार्थ अपने अनंत गुण से कार्यान्वित है, सदा सर्वदा कार्यान्वित है, एक समय भी ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ अपना प्रयोग कार्य करता नहीं हो, ऐसा एक समय भी नहीं है, इसलिए एक भी पदार्थ अपना कार्य में सर्व पदार्थ संलग्न है, लगे हुए हैं, तो दूसरे पदार्थ के कार्य करने की फुर्सत भी, किसी एक समय की फुर्सत भी दूसरे पदार्थ को नहीं है कि वो अपना कार्य छोड़ दें और दूसरे का कार्य करें, ऐसा कभी बन सकता, ऐसी वस्तु व्यवस्था तो भेद ज्ञान यहाँ से शुरू होता है कि सर्व पदार्थ अपने अपने में कार्य करता है। दूसरा, सर्व जीवों का, जीवों की जो समस्या है, संसारी सर्व जीवों की समस्या है कि हमें सुख चाहिए, जैसे कैसे भी हमें सुख चाहिए, सुख हमें नहीं मिलता और हमें कुछ कभी भी दुख नहीं चाहिए, ये सुख प्राप्त करने की समस्या भी यहाँ से समाधान हो जाती है कि सुख तुझे कहाँ से लेना है। अन्य पदार्थ में से सुख आवे ऐसी कोई वस्तु व्यवस्था नहीं है, अन्य अवस्था अन्य पदार्थ में से सुख मिले ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं, और अचेतन जो पदार्थ है वो अचेतन पदार्थ में कहीं सुख नामक गुण है, सुख गुण है और सुख अवस्था है, ये भी वस्तु में नहीं। फिर ये सुख कैसे मिले, बाहर से कहीं से मिले, किसी भी अन्य पदार्थ से मिले, ये बात रहती है। शरीर में रोग होता है, अशांता होती है, दवाई से फिर शांता हो जाती है, दवाई के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए धंधा चाहिए, धंधा के लिए अनेक प्रकार के उसके साधन होने चाहिए, तो ये सब बनता है कि नहीं बनता है। आप ये पंडिताय की बातें करें लेकिन हमारा जीवन हमारे कैसे गुजारता, हमको बातों से कुछ काम नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ तो हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन खाली हुए तो रसाता होती है कि नहीं, और ऐसी बातों से कोई पेट भर जाता है क्या? एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं करती है, इसमें से कोई पेट भरता है क्या? लेकिन तू है कौन? तू पेट वाला है या पेट बिना का है? अगर तू पेट वाला है तो पेट भर ले, कभी भरेगा नहीं, और पेट बिना का है तो पेट भरने का सवाल तेरे लिए पैदा होता है
नहीं।
पहले तो निश्चय करना पड़ता है कि मैं शरीर वाला हूं या शरीर वाला नहीं, मैं शरीर स्वरूप हूं ऐसा तो मानकर तू अनादि से चलाया है, तेरा ये अभिप्राय तो अनादि से चलता है और इससे तुझे शांति हुई है, ये बात नहीं है। और शांति के लिए तुझे कोई और रास्ता निकालना है, शांति के लिए कोई उलझन है, तो वस्तु व्यवस्था को समझनी पड़ेगी। सुख नहीं हो रहा है और दुख ही हो रहा है, ये तो एक वास्तविक परिस्थिति है जीव की। संसारी जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं, कहीं चैन नहीं, इस जमाने में तो अधिकतर टेंशन का जमाना है। तो ये दुख का मूल है कौन? जीव के दुख का मूल कहाँ है, कहाँ से पैदा हुआ है? कि वस्तु की अन्यथा कल्पना में से दुख की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? वस्तु स्वरूप की अन्यथा कल्पना की है, जैसी वस्तु है वैसी जानी नहीं, वैसी श्रद्धा में उसका स्वीकार नहीं किया, वहां से दुख की उत्पत्ति हुई है। दुख उत्पत्ति का ये मूल कारण है, इसलिए जिनागम में अकेले बोध का विषय नहीं लिया, अकेले बोध का विषय नहीं लिया। वस्तु व्यवस्था पहले बताई है और बाद में इस पर से बोध कैसे लेना, ऐसी बात नहीं। विश्व के प्रत्येक संप्रदाय में बोध तो है, हिनातिक प्रमाण में, कहीं अधिक प्रमाण में बोध की बातें हैं, कुछ कम मात्रा में है, लेकिन है तो सही। और बोध बोध का विषय होने से ही इसका एक सेक्टर अलग है कि ये धर्म का सेक्टर है। अब तो ये दुकानदारी का हो गया हर जगह, लेकिन ये धर्म का सेक्टर इसलिए कहा गया कि वहां बोध का एक प्रसंग है। लेकिन जैन दर्शन सिवा वस्तु व्यवस्था पूर्वक बोध होना ये बात कहीं नहीं बताइए, कहीं चैलेंज कर सकते हैं कि वस्तु का विज्ञान कहाँ है कि जिस पर आधारित बोध, बोध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हो गए, बोध के प्रिंसिपल्स वस्तु व्यवस्था के आधार पर हो गए, एक भी संप्रदाय बता दें तो वस्तु विज्ञान पर आधारित हो, ऐसा कहेंगे कि अपन को गर्व या अभिमान नहीं करना हो तो ईश्वर पर छोड़ देना, ये सब कुछ ईश्वर करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, तो मैं बड़ा छूट जाएगा, ऐसे युक्ति बता देगा। लेकिन ये कोई वस्तु व्यवस्था नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की बाधा आ सकती है। उलझन हो, समाधान मन का न हो सकता हो तो ऐसा कह देंगे कि ईश्वर जिस परिस्थिति में रखना चाहते हैं उस तरह अपन रहना चाहिए, संतोष मान लेना चाहिए, हर हालत में ईश्वर का किया हुआ ये हालत है ऐसा मानकर संतोष पकड़ लेना चाहिए, ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा बोध तो हर जगह मिलेगा। लेकिन वो बात टिकने वाली नहीं, इसमें जीव टिक नहीं सकता, उसमें मूल से दुख नहीं मिट सकता, क्योंकि ईश्वर को दुख देने का क्या क्या वजह है। किसी प्राणी दुखी हुए वो तो सज्जन भी नहीं चाहता, ईश्वर तो करुणा का सागर है, वो कैसे चाहेगा। प्राणी कितने दुखी है विश्व में कि दुख देख नहीं सके, का देखना दुख का उत्पादक हो जावे, ऐसे ऐसे दुख जगत में होते हैं प्राणियों को। ईश्वर क्या ऐसे दुख को नहीं देखता है या ऐसे दुख को देता है, ये बात तो निर्बाध सिद्ध नहीं हो सकती। कहते हैं कि स्वच्छ तुष्ट ऐसे वस्तु व्यवस्था समझे नहीं और सिर्फ केवल बोध की ही बात करे तो वो टिकने वाली नहीं। किस आधार पे टिकेगा? जैसे अपने मुनिराज को उत्सर्ग परीक्षा होता है तो कैसे टिकेंगे कि मेरी आत्मा अव्याबाध स्वरूप है, शाश्वत है, नित्य है, इसका नाश होने का संभव नहीं और इसके इसको कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता, तो ये अपने स्वसंवेदन परिणमन में, आनंद के परिणमन में मस्त रहते हैं। चाहे शरीर को कोई प्राणी आके खा जाए, चाहे कोई दूसरा उपसर्ग कर को जला दे, चाहे पानी में गिरा दे या काट दे, में कुछ करे, वो अंदर उसके आनंद में से छूटते नहीं। आनंद इनका स्वभाव है, इसका आधार से हो, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसमें बाधा करने का किसी से हो ही नहीं सकता, बन नहीं सकता। ऐसे अपने स्वरूप में लीन रहने का, वस्तु का स्वभाव ग्रहण करने का श्रद्धा ज्ञान में चारित्र में इतना जोर है, पुरुषार्थ है, उसको कोई बाधा साता दुख कुछ उत्पन्न नहीं होता। सामान्य प्राणी नंगे पैर चले धूप में, उसको जलता है, जलन होती है, रात को भी जूते तो पहनते नहीं। वो तो सड़क पर चले वो भी नियम नहीं है इनका, कहीं भी चलता है। द्रव क्षेत्र काल भाव प्रतिबंध भी नहीं, किसी का प्रतिबंध नहीं है। इस क्षेत्र में अच्छा है इसलिए मैं मुझे रहना निराज के लिए तो है। इसका कारण यही है कि उसको कहीं दुख नहीं है। कोई अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से न तो मुनिराज को सुख है न तो मुनिराज को दुख है। ऐसे तो किसी को नहीं है, लेकिन दूसरों का ये मानना है कि इस संयोग मेरे सुख का कारण है, ये संयोग दुख का कारण। सुख का अनुभव सुख का विश्वास पूर्वक करता है कि यहाँ से सुख मिलता है, केवल सुखानुभव नहीं करता है, सुख की प्रतीति समेत वो सुखानुभव करता है। ये भ्रांति जब छूटेगी तब वस्तु व्यवस्था पूर्वक छूटेगी, वस्तु व्यवस्था के ज्ञान बिना ये भ्रांति छूट सकती नहीं। अपने यहाँ कल्याण प्रतिष्ठा में फाइल हो गई, मंडप प्रतिष्ठा मंडप सारा रात को 3 बजे आग लगे। समाधान कैसे करें? 5 बजे 4:30-5 बजे गुरु जी के पास गए। गुरु का ध्यान जो जिस काल होने वाला है वो सब रहता है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र परिणाम। श्री कृष्ण 3 खंड के धनी थे व्यवहार से कहने में, ऐसे तो एक परमाणु का कोई धनी हो सकता
नहीं
है, दृष्टांत है। तीन खंड के पुण्य लेकर आए थे, इसका पुण्य था, लेकिन ये पुण्य पूरा हुआ तो जो सोना के द्वार का देवों ने बनाई थी, ये तो देव आके बना, जब जवान हुए गोकुल में इसके पहले तो उसका बचपन गया, मामा को उसको मारने के लिए बहुत कोशिश करता था, तो गोकुल के ग्वाल ग्वालवा के साथ खेलते रहे। तो जवान हुए तो देवों को ये हुआ कि ये वासुदेव पुरुष हैं, अभी इनका पुण्य का उदय चालू हो गया है, उसको अपना कार्य करने का है। भाई विनती किया, महाराज आप तो पधारो अपने द्वार का, उनके 16108 रानियां थी, वो 16108 पहले तो महल बनाए सोने के, स्वर्ण के महल बनाए, एक को एक कमरा दूसरी को दूसरा कमरा, ऐसा नहीं सभी के लिए एक एक महल अलग अलग। इतने पुण्य होने के बावजूद ये जल गई तो जल गई, इसके सामने जल गई, देखते हुए रह गए और अपने माँ बाप को बचा नहीं सके। परमाणु के कार्य पर किसी जीव का अधिकार नहीं है, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी का अधिकार नहीं है। कोई देव कुछ देता है लेता है, सुखी करता है दुखी करता है, नितांत भ्रमणा है। ये आत्मा को नुकसान करने वाली ऐसी भ्रमणा जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने वाले, ज्ञान दर्शन को घात करने वाले और दुख पहुंचाने वाली वो मान्यता है। स्वचतुष्टय से अस्थि और परचतुष्टय से नास्ति, इसमें से तो किसी भी संयोग वियोग की परिस्थिति में समाधान नहीं हो ऐसा बन नहीं सकता। एक प्रसंग बताइए कि इस प्रकार से स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति समझे और इस समझ को लागू करे अपने अनुभव में और असमाधान और दुख रह गए, ये क्यों बन सकता है? वस्तु व्यवस्था का ज्ञान के साथ दुख का नाश होना और सुख का मिलना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ज्ञान के अभाव में ही दुख उत्पन्न हुआ है, कल्पना से ही दुख उत्पन्न हुआ है। तो सही वास्तविक वस्तु का ज्ञान से दुख का नाश
થઈ જ્ઞાની પુરુષો ઘણું કરી જડ મૂળ દશા રાખી પોતાનું જ્ઞાનીપણું અસ્પષ્ટ રાખે છે, તથાપી પ્રારબ્ધ વશાત તે દશા કોઈને સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે તો પછી તે જ્ઞાની પુરુષ કરોડો પૂર્વ સુધી રાજપાટમાં હોય છે, 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ હતું આદિનાથ ભગવાન, 83 લાખ પૂર્વ ગ્રસ્ત અવસ્થામાં રહ્યા છે અને 1 લાખ પૂર્વ પછી આ બાજુ મુનિપણું ધારણ કર્યું,
का ये मूल का ये सिद्धांत है, स्वरूप की ये मर्यादा है। दो पदार्थ का भिन्नपणा जैन दर्शन के अलावा और कहीं जगह नहीं है। चेतन पदार्थ हो अचेतन पदार्थ हो, सजातीय पदार्थ हो विजातीय पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप अस्तित्व अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और इससे बाहर कहीं भी नहीं है, तनिक भी नहीं है, सूक्ष्म रूप से भी नहीं है, स्थूल रूप से भी नहीं है। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य होता है ऐसा देखा जाता है, इसका क्या? ये प्रश्न हो सकता है कि मैंने खाने का विचार किया, विचार तो जीव की पर्याय है तो मैं खा सकता हूँ, और खाते खाते विचार किया कि अब नहीं खाना है तो खाना छोड़ सकता हूँ। शरीर अचेतन है फिर भी इच्छा होती है तो मैं उसको हलन चलन कर सकता हूँ, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। वहां भी जीव ये देखे कि मेरा व्यापकता कहाँ तक है, मेरे भाव तक है या अन्य परमाणु में भी मेरी व्यापकता है? अगर मेरी व्यापकता शरीर में होती तो शरीर का एक अंग भी कट जाने से या काट देने से मेरा भी टुकड़ा हो जाता है, तो ऐसा तो कभी बनता
नहीं।
हीरालाल जी को पूछा था, हाथ कट गया उसी वक्त पूछा था कि कुछ अपने में से टुकड़ा हो गया ऐसा कुछ लगता है क्या? ये अलग टुकड़ा दिखता है हाथ का, ये पहले जुड़ा हुआ था अब नहीं है, तो मेरा कुछ वहां भी है ऐसा कुछ दिखता है? ये स्वरूप दिखता है या अन्य रूप दिखता है या व्यापकपणा वहां दिखता है क्या? यहाँ शरीर और कटा हुआ 15 फुट 20 फुट दूर है, यहाँ मेरा भी महाव्यापकपणा ऐसा अनुभव में आता है क्या? नहीं आता। मेरा व्यापकपणा मेरे में, ये स्वरूप संचेतन से उसको अच्छी तरह श्रद्धा ज्ञान में लेना चाहिए कि मैं कहाँ, मेरा मेरी व्यापकता की हद कितनी। यहाँ से अगर देखे तो पता चलता है कि एक जड़ परमाणु में मेरी व्यापकता नहीं है, अगर होती तो मैं जड़ हो जाता, इसलिए मैं शरीर रूप नहीं हूं। जब मैं शरीर रूप नहीं हूं तो शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरा नहीं है तो फिर शरीर से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, जहां ममत्व होकर के दुख होता है, बिना ममत्व तो दुख होने का सवाल ही नहीं, ममत्व होता है तो दुख होता है, ये कल्पना छूट जाती है। दुख कल्पना से उत्पन्न हुआ है, कल्पना छूटने से दुख नहीं रहता। ये स्वचतुष्टय और परचतुष्टय से अस्ति नास्ति है प्रत्येक पदार्थ की, गुण अवस्था से अनेक है, वस्तु अवस्था ही एक है। प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न होने से, या प्रत्येक गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होने से, वस्तु स्वयं गुण अवस्था से देखी जाए तो अनेक रूप दिखती है। आत्मा आनंद रूप दिखता है, आत्मा ज्ञान रूप भी दिखता है, आत्मा श्रद्धा रूप भी दिखता है, अस्तित्व रूप भी दिखता है, विभूत रूप भी दिखता है। गुण अवस्था से अनेक रूप देखा जाता है, वस्तु अवस्था से वस्तु रूप से देखे तो वस्तु एक है, वस्तु अनेक नहीं है। एक ही पदार्थ में एकता भी है और अनेकता भी है। ऐसे जो शास्त्र वचन है, वो श्यादवाद से प्रसिद्ध है। शास्त्र में जो श्यादवाद को नहीं समझते हैं, यानी वस्तु व्यवस्था को नहीं समझते, उसको ऐसा लगता है कि जो एक हो वो अनेक कैसे हो सकते हैं, और जो अनेक है वो एक कैसे हो सके, वो तो परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरुद्धता होवे ऐसा भी वस्तु में है, परस्पर विरुद्ध धर्म वस्तु में रह सकता है, आपस में विरोध आता नहीं, एकता और अनेकता में विरोध पैदा होता नहीं, क्योंकि गुण अवस्था से अनेक अनेक रूपता है, अनेकपणा है, अनेकत्व है, वो गुण 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 अवस्था से है, और एकत्व है वो वस्तु वस्तु का द्रव्यत्व से है। द्रव्य से वस्तु एक है, यही वस्तु गुण पर्याय से अनेक है, और वो तो व्यवहार में भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ही मनुष्य है, वो बालक बालक है, फिर युवान होता है, फिर वृद्ध होता है, तो मनुष्य रूप से उसका एकत्व होने पर भी ये तीन अवस्था हुई कि नहीं हुई, एक ही पदार्थ की तीन अवस्था हुई कि नहीं हुई। दृष्टांत में मनुष्य तो एक पदार्थ ले लो तो तीन प्रकार हुआ कि नहीं हुआ। एक सोने में सोनापने से एक रूपता है, फिर भी इसमें वजन भी है, इसमें चलकाट प्रकाश भी है, पीलापन भी है, अनेक प्रकार के चिकाश के अनेक गुण है। जितना पीला इतना सोना, ये बात तो नहीं है, पित्तल भी पीला हो सकता है, जितना पीला इतना तो सोना नहीं। इसीलिए वस्तु सोना रूप से एक सोना रूप है, और उसके अनेक जो पहलू है उसको इस तरह समझी जाए कि सोने में ऐसा होता है, सोने का पीलापन ऐसा होता है, पित्तल का ऐसा नहीं होता, ऐसा समझने में आता है। पीलापन को अकेले नहीं समझते, सोना का पीलापन कैसा है ऐसा समझने में आता है। मैंने इसकी अनेकता और एकता को एक साथ जोड़ने में आती है तो वस्तु का परिपक्व ज्ञान होता है। ये है कि नहीं प्रैक्टिकल? वैसे ही गुणों और पर्यायों को एक द्रव्य में किस प्रकार इसका वस्तु व्यवस्था है वो आगम से अच्छी तरह समझने से फिर अनेक प्रकार के असमाधान हैं, समस्याएं हैं, वो निरस्त हो जाती। गुण गुणादि भेद से भेद रूप है, ये छह द्रव्य में ले लेना ये सब बातें। गुण आदि भेद से भेद रूप है, अभेद वस्तु रूप से अभेद है, वस्तु भेद अभेदात्मक है, एक अनेकात्मक है, नित्य अनित्यात्मक है, ये सब बोले तीसरा पर्याय का विषय लिया। पर्याय से अनित्य है, द्रव्य से नित्य है, तो एक ही वस्तु एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। गुण अपेक्षा से उसमें अनेक भेद हैं, एक गुण है वो दूसरा गुण रूप नहीं है, ज्ञान है वो ज्ञान रूप है, जानने का कार्य करता है, अस्तित्व है वो होने रूप है, वो जानने का कार्य नहीं करता, अस्तित्व गुण जानने का कार्य नहीं करता, ज्ञान गुण ही जानने का कार्य करता है। ऐसे अनेक रूप है, सोने में भी जो चिकास है वो चिकास का काम करता है और पीलापन है वो पीलापन का काम करता है। द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है, अवस्था उत्पादवे रूप है, समयवर्ती रहती है और वस्तु सदा रहती है। वस्तु का द्रव्य पर्याय से यथास्थित ज्ञान होने से फिर कोई असमाधान का सवाल नहीं रहता। आत्मा एक पदार्थ है, उस पदार्थ में अर्थ पर्याय में इस भावों का तरंग होते ही रहते हैं। जैसे पानी भरा हुआ है सरोवर में तो सारा पानी एक होने पर भी उसमें जो तरंग है वो अनेक रूप है। इसमें पानी सदा ही रहता है, तरंग सदा नहीं रहते, एक एक तरंग सदा नहीं रहता है, तरंग एक तरंग उत्पन्न होता है फिर विनष्ट हो जाता है, इसी जगह दूसरा तरंग उत्पन्न हो जाता है फिर विनष्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पर्याय तरंग का होना वो वस्तु का स्वभाव है, पर्याय रूप तरंगे हैं, ये तरंग का होना वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है। अन्य मत में ये वस्तु व्यवस्था नहीं होने से इस प्रकार से बात कहीं नहीं चली है। एक दास बोध में ऐसी एक बात लिया है स्वामी रामदास, शिवाजी के जो गुरु थे, उसको शुरू से बचपन से वैराग था, फिर भी इनके माता पिता ने उसकी शादी के लिए सगाई की, फिर वो लग्न मंडप में से भागा। बहुत प्रसिद्ध कथा है, ब्राह्मण ने बोला कि सावधान, ऐसा सावधान बोलने में आता है, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे ये सावधान करता है कि अभी भी तेरे तेरे पास समय है, शादी नहीं करनी है तो तुम चला जा।
उनको ऐसा भास हो गया, रात्रि को शादी होती थी पहले, अंधेरा अंधेरी रात्रि थी तो लग्न मंडप में से भागा वो, तो छोटा गांव था, गांव बार किसी एक पेड़ पर चढ़ गया। सारी रात लोगों ने ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढने को चले गए, वो तो थोड़ा उजाला होते ही फिर जंगल में चला गया, शादी नहीं किया। उसने पुस्तक लिखा है दास बोध कर, उसमें एक जगह ऐसे माना था, बहुत साल पहले पढ़े। तो जो ब्रह्म है उसमें एक तरंगे होती है, ब्रह्म में तरंग आती है, ऐसा करते इतना वस्तु व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। और फिर तो ब्रह्म में तरंग होती है, ऐसी बात उन्होंने रखी है। आत्मा में, अपनी आत्मा में ये भावों के तरंग होते हैं कि नहीं होते हैं, शाश्वत ऐसा जो आत्मद्रव्य भले ही यहाँ तो अपना अस्तित्व शरीर का जन्म होने से दिखने में आता है और शरीर का नाश मृत्यु होने से नहीं देखने में आता है, लेकिन है तो उसका शाश्वत नित्य अस्तित्व है उसका। दूसरे भाव में जाता है वही आत्मा, तीसरे भाव में जाता है। जाति स्मरण ज्ञान से, अवधि ज्ञान से ये बात सिद्ध होती है कि मैं वो का हूँ, मेरी अवस्था पलटी है। ये अवस्था का पलटना, पदार्थ में अवस्था का पलटना ही किसकी पदार्थ का तरंग है, ये होता ही रहता है। जैसे पानी में तरंग बिना कारण होता ही रहता है, हवा में तरंग बिना कारण होता ही रहता है, वैसे प्रत्येक पदार्थ में अवस्था रूप तरंग होना वो इनका स्वभाव होने से, स्वभाव को कारण की अपेक्षा नहीं, किस कारण से वो स्वभाव को अपेक्षा नहीं, अकारण रूप से अहेतुक रूप से होते रहते हैं। सिद्धांत ऐसा है कि वो सत है, एक समय की पर्याय भी सत है अनित्य रूप से, और वस्तु का शाश्वत नित्य होना भी सत है, सत मैंने होना ये भी अनादि से अहेतुक रूप से है। सत है वो अहेतुक रूप से होता है, सत को कोई हेतु की आवश्यकता नहीं है कि उसको हेतु से सिद्ध किया जाए। गुणादि भेद रूप है, अवस्था से अभेद रूप है, द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है। पर्याय का होना ही अनित्य है, जैसे मनुष्यत्व तो ये स्थूल पर्याय है लेकिन वो नित्य नहीं है। किसी भी जीव अपना मनुष्यत्व छोड़ना नहीं चाहे तो बन नहीं सकता, वो छूटेगा छूटेगा और जाएगा ही। पर्याय है ना, तो पर्याय है उसका मतलब ये अनित्य है। पर्याय नित्य कभी होती ही नहीं, और जीव उसको कल्पना से अज्ञान से नित्य रखने की कोशिश करे तो वो रह जाए क्या, नित्य हो जाए क्या, हो ही नहीं सकते। कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कोई पर्याय नित्य रह गए स्वरूप के विरुद्ध बात है, कभी बन सकते ही नहीं। ये चला गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जिसमें प्रतिकूलता की कल्पना की हो ऐसा होता है और अनुकूलता चली जाती है तो जीव को दुख हो जाता है। वास्तव में तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है नहीं, फिर भी तुझे ये पहले से ही ये सोच लेना चाहिए कि कोई पर्याय है वो शाश्वत रहने वाली नहीं है। किसी भी पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है, पर्याय पलटना रहे पलटेगी ही, उसका पलटना ये इनका स्वभाव है, उसको कोई रोक सकता वस्तु द्रव्य से नित्य हैं, पर्याय से अनित्य हैं, शुद्ध निश्चय से शुद्ध है, शुद्ध निश्चय से वस्तु
शुद्ध है,
अशुद्ध निश्चय का विषय ही नहीं लिया है। छह द्रव्य की बात लेनी है ना, आकाश धर्मास्ति धर्मास्ति कारण, चार पदार्थ में तो अशुद्ध निश्चय का विषय ही नहीं है, एक परमाणु में और जीव में अशुद्ध निश्चय का विषय है। लेकिन यहाँ कोई जीव की बात करते हैं या परमाणु की बात करते हैं ऐसा है तो नहीं लिया। ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, बस इतना बात लिया, जो ज्ञान में जानने लायक है उसको ज्ञेय कहने में आता है, बस इतनी बात है। तो शुद्ध निश्चय से शुद्ध है, वस्तु का मूल तत्व देखे, मूल स्वरूप देखे तो वस्तु शुद्ध है। प्रत्येक आत्मा संसार और संसार अवस्था में विकृत और मलिन अवस्था रूप देखने में आता है, फिर भी शुद्ध निश्चय से तो वस्तु शुद्ध है। शुद्ध निश्चय, निश्चय मैंने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप से देखा जाए तो उसमें मलिनता नहीं, विकृति नहीं, उसमें कमी नहीं, क्षति नहीं, कुछ नहीं, वस्तु अपने स्वरूप से पूर्ण शुद्ध है।
अशुद्ध है तभी ही शुद्ध है, अशुद्ध है तभी ही शुद्ध है,
तभी ही शुद्ध है, शुद्ध निश्चय नहीं से तो तब ही शुद्ध है प्रत्येक आत्मा। निगोद का जीव भी निगोद अवस्था के काल में शुद्ध निश्चय से शुद्ध है। जैसे सिद्ध अवस्था धारक सिद्ध परमात्मा शुद्ध नहीं से सिद्ध शुद्ध है, शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध है, तो व्यवहार नहीं से भी शुद्ध है, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं से जैसे वे शुद्ध है वैसे ही निगोद की आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं से ऐसी ही शुद्ध है,
परमात्मा है,
परमात्मा है, अभी भी परमात्मा है और सर्वकाल परमात्मा है, कभी परमात्मा नहीं है वो। परमात्मा सर्वात्म में समदृष्टि दियो, ये वचन को हृदय में धारण करो, सर्वात्म में समदृष्टि में उसका मूल स्वरूप परमात्मा है ऐसा देखो, और इस द्रव्य दृष्टि को कभी नहीं हटाओ हृदय में रखना। इसका मतलब ये है कि हृदय में जो रखा है वो निकाला जाए तो हृदय निकल जाएगा, उसको नहीं छोड़ना है, द्रव्य दृष्टि को कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं कि कोई शिरच्छेद करने वाला आता है, पूरा विरोध करने वाला आता है, पूरा विरोधी होता हुआ है, हम तो उसको सिद्ध ही देखते हैं, परमात्मा ही देखते हैं। भले ही वो अपने को नहीं माने या कुछ भी माने कि मैं ऐसा हूं, मैं विरोधी हूं, मैं इसका विरोध करने वाला हूं, वो कुछ भी माने अपने लिए, लेकिन ज्ञानी तो उसको परमात्मा ही। इसलिए उनको इनकी वर्तमान अवस्था दूषित होने पर भी वो कौन हो जाती है, क्या रे बेचारा वर्तमान में अपने को भुला हुआ है, मूल स्वरूप को भूल गया है, इसलिए अवस्था में पर्याय में थोड़ा तूफान उसका चलता है, लेकिन जब वो आत्मा भी अपना मूल स्वरूप जानेगा इसका तूफान दूर हो जाएगा। तो इतनी गौण हो जाती है वर्तमान दूषित अवस्था अन्य जीवों की भी, ज्ञानी के ज्ञान में इतनी गुण हो जाती है, इतनी गुण हो जाती है कि जैसे ये है ही नहीं ऐसा दिखने में आता है। गुण का मतलब यही है कि जैसे दिखती ही नहीं है। ऐसे मुख्य रूप से वो सभी जीवों का परमात्म तत्व को मुख्य रूप से देखते हैं, क्योंकि अपने परमात्म तत्व को शुद्ध निश्चय नहीं से मुख्य रूप से देखते हैं। इसकी दृष्टि देखने की बदल गई है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध है, सामान्य विशेष रूप वस्तु होने से वस्तुत्व है। प्रत्येक पदार्थ छह द्रव्य सामान्य विशेष रूप वस्तु होने से वस्तुत्व है। वस्तु पड़ा, वस्तु मैंने वस्तुत्व पड़ा, वस्तु पड़ा। प्रत्येक पदार्थ गुण द्रव्य से सामान्य है और अवस्था से विशेष रूप है। ऐसा वस्तुत्व, ऐसा वस्तुपणा छह द्रव्य में है, इसलिए वस्तुत्व है। वस्तुत्व इसका एक गुण भी है और इस रूप सारा पदार्थ होने से सामान्य विशेष रूप होना इसका अस्तित्व रूप वस्तुत्व है। द्रविणा भाव, द्रव्य के भाव को धारण करने से द्रव्यत्व है। द्रव्य भाव को धारण करता है इसलिए उसमें द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व भी इसका एक धर्म है। अनेक गुण होते हुए भी गुण कभी बिखरते हैं। गुण से अनेकता होते हुए भी कभी एक गुण अलग नहीं हो जाता। क्यों? कि वस्तु पदार्थ की जो वस्तु जो द्रव्यपणा है वो द्रव्य से एक वस्तु रूप रहता है। द्रव्यत्व होने के कारण से अनेक गुण भी एक वस्तु रूप रहता है, अनेक पर्याय भी एक वस्तु रूप रहती है। अपना द्रव्य को छोड़ के कहीं जा सकता नहीं, एक गुण भी जा सकता है नहीं, एक पर्याय भी जा सकता। ऐसा द्रव्य भाव को धारण करते हुए उसमें द्रव्यत्व है, यानी पर्याय रूप द्रवना ये द्रव्यत्व के कारण से है। समय 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 रूप पर्याय रूप द्रवता है पदार्थ। गुण पर्याय रूप द्रवण इसलिए करता है कि उसमें द्रव्यत्व है। अहेतुक है, क्यों है तो कोई प्रश्न का विषय। धारण करते हुए प्रमेय रूप भी है। प्रमाण ज्ञान में जिसका नाप आ जाना चारों ओर से सभी पहलू से पदार्थ का नाप हो जाना, वो प्रमाण वो ज्ञान का कार्य है। नाप करने का ज्ञान का कार्य है, प्रमाण ज्ञान का कार्य है। और उसमें प्रमेय रूप होना, उसमें ज्ञेय रूप होना जैसा है वैसा प्रमाण आ जाना, वो प्रमाण रूप आने का भी स्वभाव धर्म वस्तु में है। इसलिए वो प्रमाण ज्ञान में प्रमेय रूप होती है वस्तु। अगर प्रमेयत्व नहीं होता पदार्थ में तो केवल ज्ञान भी उसको उसका नाप नहीं ले सकता। अतिश्रुत ज्ञान तो खैर नहीं ले सकता, लेकिन केवल ज्ञान भी वस्तु को नाप नहीं सकता। लेकिन प्रमेयत्व होने से वो ज्ञान में उसका नाप आ ही जाता है। ऐसा धर्म जो है वो वस्तु का स्वरूप है। ऐसे अनेक गुण लिए हैं और भी बहुत से गुण लिए हैं।